तो ये उन्होंने दुआ की थी। तो अल्लाह ने लोगों के दिल भी इस तरफ मायल कर दिए, अल्लाह ने वाफिर दे दी। अच्छा देखें, ये भी उलमा ने इतनी देखें बारीकियों में गए हैं, उन्होंने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं दुआ की कि अल्लाह यहाँ पे उग जाए ये चीजें, अगर ये दुआ करते तो शायद इसलिए नहीं की हो कि उनकी औलाद फिर कहीं ये काश्तकारी और इसके अंदर ही ना लग जाए। ये दुआ की कि अल्लाह दे देना इनको, दुनिया जहान से वहां पहुंच जाता, वहां पे उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा अब यही दो चीजें हैं ना, एक पीस और एक प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, यही दो चीजें हैं ना जिनकी खातिर लोग किसी जगह पे जाके बसते हैं। अब हम इन मुल्कों में क्यों आए, अक्सरियत तो इसीलिए कि अमनो अमान है, खुशहाली है, तो किसी जगह को भी आबाद करने के लिए ये दो चीजें चाहिए होती। अल्लाह ताला ने उसको अमन का गहवारा भी बना दिया और अल्लाह ताला ने वाफिर वहां पे चीजें भी दे दी। तो क्या था वो, एक वीरान बंजर जगह थी, रेतला सहरा था, डेजर्ट था बिल्कुल। अल्लाह ने वहां पे ऐसी यानी उनके सर्वाइवल के लिए देखो कैसे इंतजाम फरमा दिया। देखा फिर अल्लाह की मदद कैसे आती, वो घर आबाद हुआ, आज देखे उनके लिए सदका जारिया ही है ना, जितने लोग भी वहां जाते हैं इस फैमिली के लिए, इन्होंने आबाद किया था इस जगह को, वो कुर्बानी ना देते तो आज ये जगह आबाद ना होती, वरना वहां पे और ऐसा क्या है, वहां पे तो पानी तक नहीं था, तो जमजम अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया। अच्छा फिर आपको इससे क्या पता चला, एक और भी बात पता चलती है कि देखिए उन्होंने दुनिया की दुआ की है, दुनिया मांगी है ना, रिस्क मांगा है दुनिया का, अमन मांगा है यहाँ का, तो इसमें कोई हरज नहीं है कि इंसान कहे कि रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना था, तो अल्लाह ताला ने खुद सिखाई है दुनिया की हसना मांगने में कोई हरज नहीं। क्योंकि बाज लोग इसको बड़ा बुरा समझते हैं, हम तो दुनिया का कुछ मांगते ही नहीं है, बस दुनिया की सारी चीजें बुरी हैं, ना हमने घर मांगना है, ना हमने कोई खाना पीना मांगना है, ना हमने रिस्क मांगना है, ना हमने अमन मांगना, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, दुनिया की मांगो, कोई हरज नहीं है, पैगंबर मांग रहे हैं और अपनी नस्लों तक के लिए मांग रहे हैं, लेकिन साथ फिर आखिरत भी मांगो, ठीक है। तो लेकिन क्या फरमाया आगे देखिए, मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान लाए उनमें से अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, अल्लाह उनको दे। क्यों उन्होंने ये फरमाया, पीछे देखें आयत नंबर 124 में, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि मेरा अहद जालिमों के साथ नहीं है। उसमें एक इशारा ये भी था कि इब्राहिम आपकी जुर्रियत में से जालिम भी पैदा होंगे, है ना। यहाँ पे वो क्या दुआ करें, एक तो ये पता चल गया कि अल्लाह ताला ने उनके लिए जालिमों के लिए ये अहद नहीं रखा, अल्लाह ताला ने उनको एक्सक्लूड किया। तो अब बंदगी की इंतहा देखें, आजी की इंतहा देखें कि अल्लाह फिर मुझे भी समरात किसके लिए चाहिए, जो तुझ पे ईमान लाने वाले और जो आखिरत के दिन पे ईमान लाने वाले, मैं उनके लिए ये दुआ मांगता हूँ अल्लाह उनको देना, मैं भी जालिमों के लिए नहीं मांगता। देखा आपने, तो दोनों चीजें मांगी और ईमान वालों के लिए मांगे जो अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया, आला फरमाया वमन कैफरा, और जिसने कुफर भी किया, जो कुफर करे तो उमत्तेहु कलीलन, उसको भी मैं दूंगा तो सही मता, थोड़ा सा उसको भी फायदा तो दूंगा, लेकिन फिर क्या, इन द एंड क्या, सुम अतरहु इला अज़ाबिन नार, फिर मैं मजबूर कर दूंगा उसको आग के अज़ाब। यानी क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि जो काफिर भी होगा, आपने तो दुआ मांगी है ना अल्लाह सिर्फ ईमान वालों को देना, उनको ही समरात मिले, उनको ही अमन मिले, अल्लाह ताला फरमाते नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि उनको मैंने दुनिया नहीं देनी, वो तो इमामत की बात थी ना वहां पे, तो अल्लाह ताला ने फरमा दी जालिमों को इमामत नहीं दूंगा। लेकिन ये कौन सी बात है, ये है रिस्क रोजी की, दुनिया की फायदों की, अल्लाह ताला ने फरमाया वो मैं दूंगा, इसलिए कि इमामत और चीज है, हिदायत और चीज है, और दुनिया के ये माश खाना पीना ये सब चीजें ये और चीज है, असल नेमत तो वही है, ये तो दुनिया में बरतने की चीजें हैं। जाहिर है अल्लाह ताला ने इम्तिहान लेना है, तो इम्तिहान के लिए आप देखें एक कोई कमरा इम्तिहान भी होता है, कागज पेंसिल भी दी जाती है, कुर्सी मेज भी दी जाती है, देते हैं ना स्टूडेंट को, ये नहीं कहते तुमने फेल होना है इसलिए तुम्हें कुछ नहीं देंगे, देते हैं, तो बाद में उस जो एग्जाम करेगा जैसा करेगा उसके ऊपर उसका रिजल्ट है, लेकिन अभी एग्जामिनेशन हॉल में सब चीजें सबको बराबर मिल रही हैं। तो जिसने कुफर किया उसको भी मैं फायदा दूंगा, ले यहाँ पे कलीलन से ये मत समझिएगा कि थोड़ा सा फायदा दूंगा उसको मैंने ज्यादा दौलत नहीं देनी, ये नहीं है मतलब, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। कलीलन का मतलब यह है यहाँ पे कि मैं उसको थोड़ा फायदा दूंगा, यानी ये दुनिया का फायदा जो है ना ये थोड़ा सा ही है, ठीक है। हो सकता है उसको बेशुमार दौलत अल्लाह ताला दे दे, बेशुमार दौलत, दुनिया की सारी दौलत दे दे, लेकिन याद रखो वो भी तो कलील है, आखरत के मुकाबले में क्या है दुनिया, कितनी थोड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली समुद्र में डाल के निकाली थी तो जितनी उंगली पे पानी लग गया ये दुनिया है, ये दुनिया की जिंदगी है, और आखरत ये समुन्दर के बराबर। तो फिर इसके फायदे कितने होंगे, ज्यादा के थोड़े, इसका तो सब कुछ भी किसी को मिल जाए ना तो वो थोड़ा ही है। इसीलिए फरमाया कि मैं उसको भी दूंगा थोड़ा सा फायदा, उसको भी मिलेगा, यानी यहाँ का ये फायदा जो सारा है ये थोड़ा ही है, ये मैं उसको भी दूंगा। हदीस में आता है, हदीस गौर से सुनिए कितनी प्यारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने जिस तरह तुम इंसानों में रोजी तकसीम फरमाई है ना इसी तरह अखलाक भी तकसीम फरमाया। अल्लाह दुनिया तो सबको देता है, उनको भी देता है जो उसके महबूब है और उनको भी देता है जिनको वो पसंद नहीं करता। क्या पता चला, दुनिया किसको देता है, सबको देता है, उनको भी जो उसके महबूब है और उनको भी जिनको वो पसंद नहीं करता। तो आप देखिए आज कितनी तरक्की है, जो मुशरिक है जो वो है, कभी इंसान सोचता है दुआएं, लोग सवाल भी करते हैं, देखिए इनको क्यों इतना मिला हुआ है, इनको तो मिलना ही नहीं चाहिए, हैरान होते हैं, ये तो अल्लाह को मानते नहीं है, फिर ये कैसे इतनी तरक्कियां कर रहे हैं, देखिए सब कुछ तो इनको ही इनके पास ही है। तो बात ये है अल्लाह सबको देता है, इस हदीस से पता चला दुनिया सबको देता है, ये इस चीज का पैमाना नहीं है कि अल्लाह ने किसी को पसंद किया है या ना पसंद किया, सबको देता है। आगे हदीस को सुने, लेकिन दीन पे चलने की तौफीक सिर्फ उनको देता है जिनसे उसको मोहब्बत होती है। सुभान अल्लाह, तो जिसको दीन मिल जाए ना समझो वो अल्लाह का महबूब है। अगर आपको दीन मिल जाता है तो समझ लो अल्लाह ताला के प्यारे हैं आप। अगर आपको दुनिया की तरक्कियां मिल रही हैं तो उसको ये ना समझ लो कि मैं अल्लाह की प्यारी हूँ या नहीं प्यारी हूँ, वो इस चीज का कोई क्राइटेरिया नहीं। ये मुस्तद अहमद की रिवायत है। तो फिर अल्लाह की मोहब्बत की क्या निशानी, दीन मिल जाए। ये है कि जब अल्लाह ताला किसी से भलाई का इरादा करता है तो उसको दीन की समझ देता है, ये नहीं है दुनिया, दुनिया तो सारों को दे रहा है, वो काफिर को भी देता है, क्योंकि अल्लाह ताला के नजदीक इस दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर एक हदीस में आता है कि अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की अहमियत होती तो वो किसी काफिर को एक घूंट पानी भी ना देता, लेकिन ये अल्लाह के नजदीक इतनी हकीर है, मच्छर कितना छोटा है उसका पर सोचें कितना हकीर हुआ, नजर भी नहीं आता उसका तो पर हमें कभी, इतनी भी नहीं अहमियत है। ये नहीं कहा कि इसके बराबर है मच्छर के बराबर, दुनिया की कीमत इसके बराबर भी होती यानी इतनी भी नहीं है, तो अल्लाह ताला एक घूंट पानी भी ना देता, लेकिन उसने इतना कुछ दिया हुआ, इतना कुछ दिया हुआ इसलिए कि उसके नजदीक कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी बेकार रद्दी चीज है। उन्होंने सबको दे दिए, उनको भी दे दिए जो उसको नहीं मानते जो शेयर करते, तो ये तो कलील है, ये थोड़ी सी है, इससे कोई धोखा ना खाए कि फलां को मिली हुई है और फलां को क्यों मिल गई और देखो वो अल्लाह के प्यारे ही होंगे जो उनको इतना मिला हुआ, नहीं ये नहीं है क्राइटेरिया, ये सब थोड़ा है। इसीलिए एक रिवायत आती है मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, हदीस है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ऐ मेरे रब आप अपने मोमिन बंदों को कलील दुनिया क्यों देते हैं, थोड़ी इनके पास बेचारे गरीब होते हैं कभी कहीं देखे ना बस ऐसे ही गुजारे लायक। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत दिखाई, उन्होंने अर्ज किया ऐ मेरे रब तेरी अजमत और तेरे जलाल की कसम अगर एक आदमी के दोनों हाथ और दोनों पांव कटे हुए हों और उसको पैदाइश के दिन से लेके सारी उम्र चेहरे के बल घसीटा जाए, सुन रहे हैं आप, एक आदमी के दोनों हाथ और दोनों पैर कटे हुए हों और जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से मरने के दिन तक उसको चेहरे के बल सारी जिंदगी घसीटा जाए, लेकिन उसका अंजाम ये जन्नत हो, ये घर और इसकी नेमतें हो, तो इस आदमी का हाल ये है गोया उसने कभी कोई तकलीफ देखी नहीं, गोया उसको सब कुछ मिल गया, उसको सब मिल गया, सब मिल गया। फिर उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, आप अपने साथ कुफर करने वाले बंदे को इतनी फरावी, इतनी दुनिया क्यों अता करते हैं? तब उनको जहन्नुम दिखाई दी। उन्होंने अर्ज किया, है मेरे रब, अगर दुनिया में काफिर पैदाइश के दिन से क्यामत तक जिंदा रहे ना, क्यामत तक, ये 60-70 साल की जिंदगी नहीं, क्यामत तक जिंदा रहे और ऐश करता रहे, लेकिन उसका अंजाम अगर ये होगा तो उसका हाल ये जैसे उसको कभी कोई भलाई मिली नहीं, उसने देखी नहीं। ये मुस्नद अहमद की रिवायत। तो इनसे धोखा ना खाया करें, हम बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं, वो देखो उनको इतना मिला हुआ, ये है वो है, हमें कुछ नहीं मिला, हम अल्लाह के मानने वाले, और एक तो हमारे अपने ही आमाल कुछ इस काबिल नहीं है, उनको इसलिए नहीं मिला कि वो बहुत लायक थे और हम ना लायक है, नहीं, उनको भी अल्लाह ने इम्तिहान के लिए दिया, हमें भी इम्तिहान के लिए दिया, और यहाँ पे अल्लाह सबको देता है, चाहे कोई उसको माने या ना माने। देखिये ये आपके सामने दलील आए, मन कफर उमती हो कलीलन, लेकिन फिर उसके बाद क्या है, तुम अतर रूह इलाहा बिनार, फिर मैं उसको आग की तरफ, आग के अजाब की तरफ घसीटूंगा, उस तरफ मजबूर करूंगा। तो फिर उसने क्या क्या फायदा हुआ उसको इस दुनिया का, जो कुछ उसको मिला था, बताए कितनी भी मिल गई तो क्या वो कलील नहीं थी? कहां वो 60-70-80-100 साल की चलो जिंदगी, और कहां कभी ना खत्म होने वाला वक्त आग में कटना, आप उसको कामयाब कहेंगे क्या? वह बेसल मसीर, और बहुत ही बुरी लौटने की जगह, जिसको अल्लाह पाक फरमा दे ये बुरी लौटने की जगह, तो वो कितनी बुरी जगह। वह इज़यरफ़ाउ इब्राहीम अल कवाइद मिन अल बैत व इस्माइल, और जब बुलंद कर रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम इस घर की फाउंडेशन के ऊपर, बुनियादों के ऊपर तामीर कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, दीवारें बुलंद कर रहे थे, इससे क्या पता चलता है कि ऑलरेडी वहां पे बुनियादें थी। ऐसा नहीं है कि बुनियादें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई नया ही घर वहां पे बनाया था, बुनियादें ऑलरेडी थी, उन्होंने सिर्फ उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया। इसलिए मैंने आपको जो बात बताई है ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि फिर अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि यहाँ पे ये अल्लाह के घर को तामीर किया जाए, तो इसका हदूद अरबा जो था कि किधर डायमेंशन होंगी, क्या होंगी, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बता दिए गए थे। तो जब उन्होंने खुदाई की तो नीचे से बुनियादें निकल आई थी, फिर उन्होंने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो ये घर अल्लाह का घर कहा जाता है जो हिस्ट्री में है कि 10 times तामीर हुआ। सबसे पहले इसको फरिश्तों ने बनाया था, ये सबसे पहला घर था अल्लाह का जमीन के ऊपर, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर शीस अलैहिस्सलाम ने, फिर तूफान नूह में ये गिर गया था, तो उसके बाद फिर ये गिरा ही रहा था, मतलब यहाँ पे एक टीला सा था, तो लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि कोई अल्लाह का घर बनाओ। इसके बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फिर कौम अमालका ने, फिर जुरहम कबीले ने, फिर कुसई बिन कलाब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद में से हैं उन्होंने, फिर कुरैश ने, अब याद है आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले की बात है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर के अंदर हिजरे असरफ अस्वद रख के और फिर लेके गए थे और वहां पे लगाया था, फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने। ठीक है, ये उन्होंने इस तरह से जब इसकी बुनियादों पे तामीर कर रहे थे वो, तो उस वक्त वो क्या कह रहे थे, ये काम करते हुए निकी का काम करते हुए साथ साथ दुआएं कर रहे हैं, क्या दुआ कर रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए हमारे रब तू हमसे कबूल कर लेना, दोनों मिल के दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह हमसे कबूल कर लेना। सुभान अल्लाह, इससे हमें क्या पता चलता है, बहुत गहरी बात है। देखिए एक तो ये पता चला कि ये इतनी मुशक्कत का काम है, देखिए इट्स नॉट इजी कोई जगह पे कंस्ट्रक्शन करना, और वो भी दो लोगों से, कोई उनके पास एक मजदूरों की फौज तो थी नहीं, दो लोग थे सिर्फ। उन्होंने ये नहीं कहा अल्लाह तूने मुझे इमाम बना दिया, अब मैं ये भी काम करूं, इतनी मुशक्कत वाला काम, मैं बूढ़ा आदमी हूँ और मैं इतनी मुश्किलों का काम करूं, ना मेरे पास कोई चीजें हैं, कोई क्रेन नहीं है, कोई उठाने के लिए चीजें नहीं है। नहीं, इमाम है लेकिन अपने हाथों से काबतुल्लाह की तामीर कर। अच्छा, फिर दूसरी बात देखिए, तामीर करते हुए क्या कह रहे हैं, अल्लाह हमसे कबूल कर, ये कौन बंदा कहेगा, ये
وہی انسان کہہ سکتا ہے کہ جس کو یہ فکر لگی ہو قبولیت کی کہ اللہ پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو.
دیکھیں ایک بندہ جس کو بہت زوم ہو کہ میرے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں اور میں تو بڑی میں نے اتنا کچھ کیا ہے, میں نے اتنی قربانیاں دی, میں نے فلاں کیا. ہم تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کر ہی سوچتے ہیں نا, اب اور ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے تو سارا کچھ ہی کر لیا. وہ اتنی نیکیاں کر کے بھی, اتنی قربانیاں دے کے بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس کو ہم اس کام کو اس عمل کو ہم سے قبول کر لینا. ان کو قبولیت کی کتنی فکر لگی ہوئی, ان کو تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے بعد کہ اتنی آزمائشوں اتنے امتحانوں سے گزرنے کے بعد اور اتنی بڑی سعادت پانے پہ کہ میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوں, ان کو تو فخر ہونا چاہیے تھا, ان کا تو سر فخر سے بلند ہونا چاہیے تھا. لیکن اتنی عاجزی سے دعا کر رہے ہیں. ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ درخت جتنا پھل سے لدا ہوتا ہے نا اتنا ہی عاجزی سے جھکا ہوتا ہے. جو جتنے بڑے مرتبے پہ ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی عاجز اور انکساری والا ہوتا ہے. یہ انبیاء دیکھیں ساری خدمات کر کے بھی قربانیاں دے کے بھی وہ کیا بتا رہے ہیں, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ ہم تیرا حق کبھی ادا کر ہی نہیں سکتے, حق تو وہ ہے کہ جو کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا. اے اللہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری اس خدمت کو قبول کر لینا, اس کی التجائیں کر رہے ہیں. اور ہم جو خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے مطمئن بیٹھے ہوئے, اور اس جو انکساری تو بالکل نہیں ہوتی, خاص طور پہ اگر ذرا سا بھی کوئی نیکی کا کام کر لینا, اب تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں, اب کیا, اب تو ہمارے مرتبے ہی بہت بلند ہو گئے, اب تو ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں, اب اور کیا کریں, نماز روزے ہم کر لیتے ہیں, قرآن ہم پڑھ رہے ہیں, اب اور کیا کرنا ہے ہمیں. کبھی یہ بھی فکر ہوتی ہے اس کی قبولیت کی کہ پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو. اب وہ پتہ ہے نا قرآن میں کئی جگہ پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہفتے اعمال کے بارے میں, کیا اعمال کے ضائع ہونے کے بارے میں, حبطت اعمالہم, کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے. تو اعمال تو ضائع بھی ہو جایا کرتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کہیں کوئی بڑائی کا احساس آ جائے, کوئی تکبر آ جائے, کوئی کچھ آ جائے تو عمل قبول ہی نہیں ہو. اور وہ دیکھیں تقبل با تفاعل سے, با تفاعل میں جنہوں نے گرامر پڑھی ہوئی ان کو پتا ہے کیا ہوتا ہے مشقت, محنت سے کام کرنے کا معنی ہوتا ہے نا, چاہے اس میں رکاوٹیں بھی ہوں. تو کتنی محنت کا وہ کام کر رہے ہیں, کتنی مشقت سے کام کر رہے ہیں, پھر بھی یہ احساس ہے. تو ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ ہم چاہے کتنا ہی مشکل کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اتنے نہ پھول جائیں کہ میں نے یہی بہت بڑا کام کر لیا کہ میں اللہ کی فرما برداری کر رہی ہوں, حالانکہ دیکھو نا مجھے کتنی مشکل آ رہی ہے, کتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں, پھر بھی میں کر رہی ہوں. تو اب اس کے اوپر اتنی بڑی بن کے بیٹھ جائیں, نہیں, کتنی محنت سے کیا ہوا کام مگر پھر بھی فکر رہنی چاہیے اللہ مجھ سے قبول کر لینا, پتہ نہیں اس میں کتنی کمیاں رہ گئی ہوں, اللہ میرا کام اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ کے سامنے پیش ہو, کہ خود تیرے دربار میں شرف قبولیت اس کو مل جائے. پروردگار تو ساری کمیوں کے باوجود اس کو قبول کر لے, یہ فکر ہونی چاہیے. لیکن یہ اسی کو ہو سکتی ہے جس کو, جو اپنی نیکیوں کو بہت کاؤنٹ نہ کرتا ہو اور ان پہ فخر نہ کرتا ہو, اور اس کو نیکیوں پر اپنی بڑائی کا زوم نہ ہو, تکبر نہ ہو اپنی نیکی کا, وہی یہ فکر کرتا ہے, وہی یہ سوچتا ہے ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا, ابھی تو مجھے بہت کرنا ہے. وہی نیکی کر کے اس کی قبولیت کی فکر کرتا رہتا ہے. فرما رہے ہیں انک انت السمیع العلیم, ہے اللہ تو ہی ہے, تو سننے والا ہے ہماری دعاؤں کا, ان کا ہماری التجاؤں کا سننے والا, تو جاننے والا بھی ہے جو ہمارے دلوں میں. سوچے اگر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے یہ دعا مانگ رہے ہیں, ہمیں کتنی اس چیز کی فکر کرنی چاہیے. तो फरमाया इन्नका अंत समीउल अलीम, यानी तू ही है सुनने वाला। इसमें जो मैंने आपको बताया था ना हसर का माना, यानी तू ही अकेला है। गो के हम भी सुनते हैं, जानवर भी सुनते हैं और हशरात भी सुनते हैं, लेकिन देखिए जो अल्लाह ताला का सुनना है ना और हमारे सुनने में बहुत फर्क है। अल्लाह ताला जो सुनता है तो वो सिर्फ इंसान की जाहिर बात को, आवाज को नहीं सुनता, उसके दिल की बातों को भी सुनने वाला, उसकी इल्तजाओं को भी सुनने वाला और जानने वाला भी है। तू ही अकेला, तेरे अलावा कोई ऐसा जानने वाला नहीं है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन, अब उन्हीं की दुआ की आगे कंटिन्यूएशन है। ए हमारे रब, बना दे हमको फरमा बरदार, दोनों को, हम दोनों को फरमा बरदार अपने लिए। अब देखें वो कितने फरमा बरदार ऑलरेडी हैं, लेकिन दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, इसलिए कि इंसान को हमेशा इस चीज की जरूरत रहती है कि वो अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहे। यानी इसलिए कि इंसान को पता नहीं ना होता कि आज अल्लाह का फरमाबरदार है, कल हालात कैसे हो, कल ईमान का लेवल क्या हो। तो यानी इसको कायम रखना, हमें बनाए रखना, हमें इस पे इस्तकामत अता फरमाना, हमें जमाए रखना, कितना इंसान को पता चलता है ना कि देखो इतने ऊंचे मकाम पे भी पहुंच के ये डर रखते हैं कि अल्लाह पता नहीं ये ना हो कि कबूल ही ना हो हमसे, अल्लाह पता नहीं ये ना हो कि कल को क्या हालात हो। अल्लाह हमें हमेशा फरमा बरदार रखना, तो हम सबको कितना ज्यादा इसमें डरते रहना चाहिए कि आज तो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि मैं कुछ सीख रही हूँ या कुछ समझ रही हूँ या कोई बात कर रही हूँ या हिदायत की तरफ आ रही हूँ। अल्लाह कल को मेरी किसी गलती की वजह से, मेरी किसी बात की वजह से ऐसा ना कहीं हो कि मुझसे ये तौफीक छिन जाए। कभी भी फख्र ना करें, कभी गरूर ना करें अपने किसी नेकी पे, और कभी अपनी नेकी को काफी ना समझे। जो काफी समझता होगा वो ये नहीं कहेगा रब्बा ना तकबल मिन्ना, देखिए इतनी नेकियां करके भी इन्होंने काफी नहीं समझा, उसको क्या परवाह, मैंने ऑलरेडी इतनी करनी है, अब ये कबूल होना हो फिर क्या फर्क पड़ता। ये वही फिक्र करेगा ना जो यही समझेगा कि अल्लाह अभी भी काफी नहीं है, अभी भी हक नहीं अदा हुआ, अल्लाह अभी भी नहीं मैंने कुछ किया। कौन कह रहे हैं, सोचेगा हम क्यों छोटी छोटी, ये देखिए ये शैतान के वसवसे हैं, छोटी छोटी चीजें करके हम सोचने लगते हैं हमने कितना बड़ा मारका मार लिया, हम कितने पहुंचे हुए बन गए। कोई पता नहीं है, आज अल्लाह ने तौफीक दिया तो वो भी अल्लाह ही की देन है, कल वो चाहे तौफीक छीन ले तो कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह हमें बनाए रखना मुस्लिमीन, अल्लाह फरमा बरदार रखना अपना। और फिर सबमिशन मांग रहे हैं ना, अल्लाह अपने इताअत गुजार रखना, लक्का लिए अपने, सिर्फ अपने लिए। وَمِن ذُرِّيَّتِنَا, اے ہم اللہ ہمارے, ہماری اولادوں میں سے بھی, ہماری ذریت میں سے بھی, امت مسلمت اللہ, اے اللہ ایک ایسی جماعت ضرور رہے, کیونکہ پتہ ہے نا کہ ایک ظالم بھی ہوں گے ان میں, تو اے اللہ لیکن ایک جماعت ایسی ضرور رہے جو تیری فرما بردار ہے. دیکھیں ان کی دعا نسلوں تک کے لیے, ہم اپنی اولاد تک دعا مانگ لیتے ہیں, آگے نسلوں تک سوچتے بھی نہیں, لیکن ان کی دعائیں آگے تک, اللہ فرما برداری صرف ہم تک نہیں ہے, نہیں کہ ہم ہی صرف فرما بردار, اللہ آگے بھی. اور یہاں پہ دیکھیں ہر قدم پہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, تاکہ پتا چلے کہ یہ وہی نسل ابراہیمی ہے جو آگے چل کے پھر امت مسلمہ بنی, نسل اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے چلی, کیونکہ انہوں نے دعا کر رہے ہیں نا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا. یہاں پہ اسحاق علیہ السلام تو نہیں ہے, بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگی امت مسلمہ, یہ ہوگی اسماعیل علیہ السلام کی ذریت, کیونکہ انہوں نے یہ دعا کی. وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا, اور اے ہمارے رب ہمیں دکھا دے ہماری عبادت کے, اللہ طریقے دکھا دے. عبادت کے طریقے کیا, یعنی کس طرح ہم تیری عبادت کریں جس سے تو راضی ہوتا ہو, سمجھ آئی بات. دیکھیں ہاں, ورنہ ہم سوچتے کیا ہیں कि नियत काफी होती है, हमारी नियत अच्छी है तो बस काम चलता रहता है, हम यही इसी को अपने लिए काफी समझते हैं. हम बहुत, हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर बड़ी लगन है, हमारे अंदर बहुत खैर है. अब जो भी आपके अंदर जज्बे हैं, सिर्फ बोलने से, नियतें रखने से काम नहीं चलेगा, जब तक आप अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जैसा तरीका उसको पसंद है उसके मुताबिक उसकी इबादत ना करें, वो कह रहे हैं कि हमें अल्लाह दिखा दे। अब अल्लाह ताला कैसे दिखाएगा? हो सकता है ख्वाब में दिखा दे, हो सकता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके सिखा दें, जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पता है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके नमाज सिखाई थी, पढ़ के दिखाई थी। तो अल्लाह हमें दिखा देना अल्लाह ऐसे ताकि हम वैसे ही करें। देखो इससे पता चलता है ना उनको कितना शौक है अभी भी, हालांकि अल्लाह के फरमा बरदार है, लेकिन कैसा शौक है कि हम अल्लाह की वैसी इबादत करें जैसे उसको पसंद है। ये नहीं कि हम बस कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अब हमें इसमें रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं कि कैसे अल्लाह ताला को पसंद है, किससे वो राजी होता हो, बस हमने कर ली ना, हमारी नीयत अच्छी है, वो अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है कि मैंने उसके लिए नमाज पढ़ी है तो ठीक है।